ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कैंटो 7 सातवां स्कंद 15वां अध्याय 23 नंबर श्लोक। अन्विक्षया शोक मोहो, अन्विक्षया शोक मोहो, दम्भं महत् उपासया, दम्भं महत् उपासया, योगांतरायन्मौनेन, योगांतरायान मौनेन, हिंसान कामाद्य अनेहया, हिंसान कामाद्य अनेहया, अनेविक्षया शोकमोह, दम्भं महदुपासया, योगांतरायान मौनेन, हिंसान कामाद्य अनेहया।
माताजी शब्दार्थ
शब्दार्थ अनिविक्षया भौतिक तथा आध्यात्मिक विषयों में विचार विमर्श करके शोक शोक मोह तथा मोह दम्भम मिथ्या अभिमान को महान वैष्णव उपासया सेवा द्वारा योग अंतरायान योग के मार्ग में अवरोधों पर मौनेना मौन से हिंसा ईर्ष्या काम आदि इंद्र तृप्ति के लिए अनिहया बिना चेष्टा के अनुवाद। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्र तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पा जा सकती है। तात्पर्य, यदि किसी का पुत्र मर गया हो तो शोक तथा मोह से प्रभावित होना और मृत पुत्र के लिए रोना स्वाभाविक है, लेकिन भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोकों पर विचार करके करने से वह शोक तथा मोह पर विजय पा सकता है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु मृत्यु ध्रुवम जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। चूंकि आत्मा का देहांतर होता है, अतएव जिसने जन्म लिया है उसे अवश्यमेव यह शरीर छोड़ना और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। अतएव कृष्ण कहते हैं धीर सत्र न मोयति, जो धीर है, जो दर्शन का विद्वान है और ज्ञानी है, वह आत्मा के देहांतरण पर कभी दुखी नहीं हुआ करता।
अनुवाद दोहराइए,
अनुवाद पीछे दोहराए। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्र तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है।
ओम ज्ञान सुमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुर्मीलितम् श्रीचैतन्यमनोविष्टं साधितम् जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण अमेक्षिया शोक मोह दंप महल उपासया युगांतरायन मोहन हिंसम कमल यनी हया। नाद मुनि इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। असमय तो भगवतों का जो संदेश है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है संस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। तो हम सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति बड़ी मोटर चला रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे स्थान में रहता है, तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, पर शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति संस्कृत है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। और भगवदम के चौथे स्कंद में नारद मुनि प्रचेता से कहते हैं संस्कृत व्यक्ति के तीन जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं। इस जन्म को कहा जाता है शोक्र जन्म। संस्कृत में शोक्र का अर्थ है वीर्य। दूसरा जन्म हमें प्राप्त होता है जब हम कोई प्रमाणिक गुरु से हरि नाम दीक्षा लेते हैं। तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मण या ज्ञाति मंत्र स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत मनुष्य वो है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इस अध्याय का नाम है संस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। और जैसे हम रविवार की क्लास में कह रहे थे, इन श्लोकों में नारद मुनि ने बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है किस प्रकार आप इंद्रिय तृप्ति से बच सकते हो जो कि हमारा शत्रु है। और नारद मुनि क्या कहते हैं, दृढ़ होकर सेवा करने से आप इंद्रिय तृप्ति से बच सकते हो। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, किस प्रकार आप मोह और शोक से बच सकते हो। शोक और मोह वो कोई दुर्घटना बीतती है हम शोक करते हैं, किसी का देहांत हो जाता है रिश्तेदार मित्र का, हम शोक करते हैं। जिस व्यक्ति पर आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि शरीर नश्वर है और किसी समय भी समाप्त हो सकता है। भगवान गीता में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति है ना जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है ना मृत्यु के लिए शोक करता है। आप श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में हिरण्यकश्यपु की कथा पढ़ते हो। साधारण व्यक्ति से पूछा जाए हिरण्यकश्यपु का परिचय तो कहेगा वो असुर है। बड़े उत्तम कोटि के भक्त है। तो हिरण्यकश्यपु के भाई की मृत्यु हुई थी भगवान के हाथों में और हिरण्यकश्यपु भगवान का गहरा शत्रु बन गया था। तो जब हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी और बच्चे अत्यंत दुखी थे। तो हिरण्यकश्यपु वहां पहुंचे, अपने भाई और भतीजों को उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि एक समय एक राजा था जिसका नाम था सुयोजना। प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो युद्ध में खुद आगे बढ़ के लड़ते थे। तो महाराज सुयोजना युद्ध के समय मर गया और उसकी पत्नियां वो उनके शरीर को पकड़कर बहुत ऊंची आवाज से रो रहे थे। मेरे शासन के अनुसार अगर सुबह के समय मृत्यु होगी तो शाम तक अंतिम संस्कार कर देने चाहिए। उनकी पत्नियां तैयार नहीं थी अंतिम संस्कार करने के लिए, सोच रही थी कि रोने से वो जीवित हो जाएंगे। यमराज जी ने देखा ये स्थिति को। यमराज जी एक छोटे बालक के रूप में आए और उन्होंने कहा आप लोग रो रहे हो तो ये नहीं जानते कि तुम सब का अंत भी आएगा। उन्होंने कथा सुनाई कि एक समय एक शिकारी था जो कि जंगल में था और जंगल में पक्षी पत्नियों की पत्नी के साथ, पक्षी नहीं कहते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे थे। शिकारी ने अपनी जाल फेंक कर पत्नी को फंसा लिया। पति ने देखा कि उसकी पत्नी उसके सामने है पर शिकारी की जाल में है, तो ये शो करते करते वो भी उसमें फंस गया। तो यमराज ने कथा सुनाई ये स्थापित करने के लिए कि हम रो रहे हैं पर ये नहीं जानते कि हमारा भी अंत आने वाला है। तो इसके पश्चात हिरण्यकश्यपु की पत्नी और बच्चे संतुष्ट हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है शोक से आप बच सकते हो अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, पर अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो शोक द्वारा आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है कि नहीं। तो शोक से बच सकते हो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि भौतिक संसार में सुख और दुख दोनों ही अनुभव करना पड़ेगा। अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा और आध्यात्मिक वाली भक्त दोनों स्थितियों में स्थिर रहता है। ये नहीं कि जब दुर्घटना हो तो अत्यंत दुखी हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का पालन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि छोटी आयु से ही अध्यात्म ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आगे कहते हैं शोक और मोह क्या है। असली मोह हम ये शरीर है, ये शरीर हमारा असली स्वरूप है और इस शरीर का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति। ये है अज्ञानता का प्रभाव। हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानं जनसुलज्ञा चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सबका जन्म हुआ था अज्ञानता में, तो मोह कब आता है, जब हम अज्ञानता में ही रहते हैं। मोह के कारण हम सोचते हैं कि शरीर इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए है और हम भूल जाते हैं असली हर। तो मोह को आप कैसे दूर कर सकते हो, जैसे अंधेरापन दूर कैसे होता है, कैसे होता है, रोशनी के साथ। तो अज्ञानता में हम जन्म लेते हैं, जैसे जब आप पैदा होते हो आप लिखना पढ़ना भी नहीं जानते पर प्रयास करके पढ़ते हो और सीखते हो। तो मोह को दूर कैसे किया जाए, नारद मुनि कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज अधूरा है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक जीरो हो, दो जीरो हो, हजार जीरो हो, अंत में नतीजा जीरो ही है। पर आप एक अगर जोड़ दोगे तो या वो दस बन जाएगा या सौ या हजार। तो दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कल हम पढ़ रहे थे कि भारत में एंटी डिप्रेशन दवाइयां जो लोग लेते हैं, डिप्रेशन लोग क्या बोल रहे हैं, चिंता तनाव। आजकल समाज की एक बड़ी समस्या है चिंता और तनाव। चिंता तनाव से की संख्या तेजी के साथ बढ़ते जा रही है। कल मैंने पढ़ा कि भारत में चिंता और तनाव की दवाइयों की बिक्री 25% बढ़ गई एक साल में। सब दवाइयों की बिक्री बढ़ी है, सबसे ज्यादा बढ़ी है चिंता तनाव की दवाइयां। तो चिंता तनाव का कारण क्या है, चिंता तनाव का कारण क्या है? एक कारण यह है अनेक भौतिक इच्छाएं। हमें ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए, हमने भी अंबानी बढ़ना है, हमने भी बिरला टाटा बनना है। और जब आप अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं को रखते हो, जब इन इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या परिणाम होता है, चिंता तनाव। तो चिंता तनाव का कारण क्या है, अज्ञानता। अगर हमारे पास ज्ञान हो, प्रभुपाद जी कहते थे हमारा सिद्धांत होना चाहिए सारा जीवन ऊंचा विचार। सारा जीवन बचाओगे तो चिंता तनाव से बच पाओगे। आपके मंदिर में कोई चिंता तनाव की दवाइयां लेता है, कोई आवश्यक नहीं। चिंता तनाव की दवाई हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत सेवा। तो चिंता तनाव से अगर बचना है तो ये आध्यात्मिक जीवन एक उपाय है। आज अब समाज में आप देखते हो अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंता तनाव और शास्त्र के विपरीत कार्य। भगवान ऋषभदेव भगवत में कहते हैं नूनम प्रमता कुरुते विकर्म। जो व्यक्ति विकर्मिक कार्य करता है, विकर्मिक कार्य किसे कहते हैं? जो कि शास्त्र के विपरीत हो। जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो मूर्ख है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि वह मूर्ख, वो तो पीएचडी है। वो मूर्ख है क्योंकि वो ये नहीं समझता, आज जो ध्येय उसके पास है वो उसे क्लेश दे रहा है। और जब आप विकर्मिक कार्य में जुड़ते हो तो अवश्य ही फिर से ध्येय प्राप्त होगा। जो हमें क्या देगा? केवल क्या देगा? केवल कष्ट ही कष्ट पहुंचाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करता है। इसे कहा जाता है शास्त्र चक्षु। जैसे हम आंखों से देखते हैं, जैसे हम चश्मे का उपयोग करते हैं नेत्रों के सहयोग के लिए, उसी प्रकार हमें हर कार्य को, हर स्थिति को शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो ठीक ज्ञान प्राप्त करोगे। तो यहां नारद मुनि कह रहे हैं शोक से कैसे बचना। शोक से आप बच पाओगे अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो। फिर मोह से कैसे बचोगे? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझ पाता है कि चाहे मुझे कितना भी सुख मिल जाए मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। श्रीमद् भागवत में आप महाराज ययाति की कथा पढ़ते हो, उन्हें उनको 10,000 वर्षों के लिए पूरी सुविधा थी भौतिक सुख की। अंत में उन्होंने क्या कहा? मैं एक बकरे जैसा था। बकरा जो है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कतल खाने के भार है और इंद्रिय तृप्ति का मौका मिले तो उसका लाभ उठाएगा। ये नहीं समझ पाएगा कि मेरा अंत किसी समय भी आ जाएगा। तो उसी प्रकार अज्ञानता में हम क्या सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है। क्या कारण है कि प्रचार की सेवा पर बल दिया जाता है? क्योंकि ये कार्य साधन है जिसके द्वारा आप लोगों की ज्ञानता को दूर कर सकते हो। ये है भक्तों का भाव। लोगों को क्या कारण है हम ज्ञान देना चाहते हैं? लोगों का मोह दूर करना चाहते हैं। वो मोह क्या है? ये देह की पहचान। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और गीता में ज्ञान ज्ञान शुरू होता है कि शिक्षा के साथ, तो मैं शरीर नहीं हूं। भक्तिविनोद ठाकुर महानाचार्य ने कहा है ये जो भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और ये है ABC आध्यात्मिक जीवन का। ये पहचान कि तुम हो कौन। जब आप ये समझ जाओगे कि शरीर के द्वारा केवल आप आत्मा को ढक रहे हो। भगवान क्या उदाहरण देते हैं? जैसे आप अपने पोशाक से शरीर को ढकते हो, ये आत्मा को ढक रहे हो शरीर के द्वारा। और आत्मा का देहांतर होता है। और ये निर्णय कैसे किया जाता है? तीसरे स्कंद में देवहूति ने कपिला देव से पूछा ये कैसे निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। और भगवान ने क्या कहा? कर्म न देव नेत्र न जंतु देहो पपते। हम सबके सब कार्यों को अनेक साक्षी देख रहे हैं और कर्मों के अनुसार निर्णय किया जाता है किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। तो भोर से निकलना आवश्यक है, इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा ये जिज्ञास करो। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, राजविद्या। ये जो ज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सब ज्ञानों का राजा है। दूसरे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। भौतिक ज्ञान द्वारा आप अपनी समस्याओं का हल नहीं कर सकते। शास्त्र में जैसे आप पहले सुन बैठे हो, हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। तो आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल कैसे किया जाता है, सुनने से और पढ़ने से। उदाहरण के लिए इस्कॉन के केंद्रों में रोज सुबह भगवत का क्लास होता है। क्यों? इसलिए सुनोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से अज्ञानता दूर हो सकती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये कैसे, क्या कारण है जानते हुए भी हम कल काम करते हैं? भगवान ने क्या कहा, भगवान कहते हैं काम है ऐसे क्रोध ऐसे। और फिर भगवान कहते हैं ये जो आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं, इनका निवास का स्थान कहाँ है? कहते हैं ज्ञान के तलवार से इस शत्रु को कावत करो। ज्ञान के तलवार से का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान है, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में अनेक प्रकार के दोष हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं। और इसीलिए भगवत में कहा गया है नास्त परेशु मदेशु नित्यम भगवत सेवया। भगवती तुम श्लोक है भक्ति भावती नहीं सकी। ध्यान पूर्वक अगर हम भगवतम को उपदेश सुनेंगे तो इस मोह से बच सकेंगे। तो हमने शोक से बचना है, मोह से बचना है। ये कैसे संभव है? ये संभव है आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। इसलिए हम भक्तों के लिए अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें। प्रभुपाद ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया पर साथ में अध्ययन की सेवा पर भी बल दिया। प्रभुपाद ने कहा जब परम भगवान देखते हैं कि आप उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, मुझे इसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, चाहे आप घर में रहते हो या मंदिर में। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो माया का विरोध सरलता से कर सकोगे। तो नारद मुनि स्पष्ट कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से मोह से बच सकते हो और किससे, शोक से। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं उत्तम भक्तों की सेवा करके अहंकार से रहित हो सकते हैं, क्योंकि हम सब में अहंकार रहता है। सच बात है, ये कलयुग का एक बड़ा दोष है अहंकार। हम सब सोचते हैं कि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है, तो अहंकार के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते, अहंकार के कारण हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ना चाहते। तो चीज शास्त्र में ह्यूमिलिटी, विनम्रता पर बल दिया गया है। 26 गुण है जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सुनाए, जिनमें एक है विनम्रता। और चैतन्य महाप्रभु ने इस पर बहुत बल दिया, नाद भी सुनिचेरा तरोपी अमानी न मना लेना कितना दिशा। आदि श्लोक रोज सुनते हो, हम इस्कॉन मंदिरों में रोज शास्त्र का उच्चारण करते हैं। क्षेत्रीय महाप्रभु ने स्वयं अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया था ग्रंथों की रचना करने के लिए, और जो सिद्धांत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी छोड़ गए हैं उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमें केवल 8 श्लोक दे गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पर अगर आप इन 8 श्लोकों को ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे कि सारे वैदिक शास्त्रों का सार इन 8 श्लोकों में प्राप्त है। तो इस विषय पर 30 श्लोक में महाप्रभु ने कहा, नाद भी सुनिचेरा, अगर आप सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो हमें विनम्रता का भाव होना चाहिए, अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हो तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रतापपुत्र। उनका बड़ा प्रयास था महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो। महाप्रभु दर्शन देना चाहते थे, पर वो चाहते थे कि इनका उत्साह और बढ़े। महाप्रभु ने बहाना दे दिया, मैं सन्यासी हूं, मैं राजा के साथ नहीं रह सकती, राजा को नहीं मिल सकता, कि राजा को स्त्रियों की संगत भी रखनी पड़ती है और धन से। पर भक्तों ने बड़ा प्रयास किया, नित्यनंदन है स्वरूप गांव में, पर जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा रथ यात्रा के शुभ अवसर पर, रथ यात्रा आरंभ होने से पहले राजा झाड़ू लेकर सड़क को साफ कर रहा है और फिर उसी सड़क को गुलाब के पानी से धो रहा है, महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए ये विनम्र भाव को देखकर कि उन्होंने एक खास दर्शन प्रस्तुत किया। महाप्रभु हर कीर्तन मंदिर, हर रात के साथ 8 कीर्तन मंदिरों को जोड़ते थे, उन्होंने अपना विस्तार किया था जिसमें वो एक साथ 8 कीर्तन मंदिरों में उपस्थित थे। और ये दिव्य दर्शन केवल उनके चुने हुए भक्तों को ही प्राप्त हो रहा था। तो महाप्रभु ने देखा राजा है पर इतना विनम्र कार्य कर रहा है, महाप्रभु ने उन्हें खास नेत्र दिए जिसके द्वारा वो ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर सके। तो भगवान का आदेश है हमें अहंकार से रहित होना चाहिए। कभी कभी हमारे में अहंकार आ जाता है, हम इतने बड़े भक्त बन गए हैं, हम तो बड़े प्रधान बन गए हैं, भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं, हमें अहंकार आ जाए, हमें इतने ग्रंथ बांटे तो हमें आदर में देते हो, भगवान इसे खुश नहीं होते। वो अहंकार जो है हमारा शत्रु है। हम सब सोचते हैं हम भगवान की सबसे बड़ी देन है पृथ्वी पर, गॉड गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, ये हम सबके मन में भाव है, यू नो गॉड स्पेशल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। हम सोचते हैं कि हम भगवान की खास देन है इस पृथ्वी पर, तो हमें सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल बेकार के हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमारी योग्यता के द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई है। भक्त प्रभुपाद जी से कहते थे ये सब आपके प्रयास है, आपने इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की, तो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा हाँ मेरे प्रयास से। जब ये कहा जाता था वो कहते थे नहीं, गुरु महाराज की कृपा है ये सफलता प्राप्त हुई। तो नारद मुनि कह रहे हैं अगर तुम अहंकार से रहित होना चाहते हो तो उत्तम भक्तों की सेवा करो, ना ही उत्तम भक्तों की, सब भक्तों की सेवा करो। हम सबके दास हैं, आप सबके नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ है। हाँ कई बार लोग मंदिर में आते हैं, तुम्हारे मंदिर में मिस्टर दास है कोई, तुम्हें कहना पड़ता है सब यहां दास है। तो दास का अर्थ क्या होता है, क्या है अर्थ दास का। हाँ सेवक, किसके सेवक, भगवान के और भक्तों के। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो सोचता है मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूं और किसी और का नहीं, भगवान के सामने मैं प्रणाम करूंगा और किसी को आदर नहीं दूंगा, बाकी सब छोड़ है। तो वो केवल भगवान की सेवा में ही थोड़ी मात्रा में जुनता है। पर भक्त जानता है कि भगवान अपने भक्तों से अभिन्न है। भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कहे मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो हमारे में विनम्रता का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव, ये नहीं कि हम केवल गुरु की सेवा करें, हमारे भाव होना चाहिए सब भक्तों की सेवा करें, सबके दास बने। और ये भावना ये आचरण देखकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें विनम्र भक्त बनना है। कई बार किसी में कोई अच्छा गायक होता है तो कीर्तन करता है तो घमंड गौरव आ जाता है, मैं इतना सुंदर गायक हूँ, मेरा इतना सुंदर कंठ है। भक्ति सिद्धांत जी जब कीर्तन होता था उन व्यक्ति को चुनते थे कीर्तन करने के लिए जिनकी सबसे कड़वी आवाज हो, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी कहते फिर लोग शब्दों को सुनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा मधुर कंठ को सुनो तो हम कंठ से प्रभावित हो जाते हैं और शब्दों को भूल जाते हैं। तो हमारे ये विनम्रता का भाव, तो विनम्रता का भाव कैसे अनुकूल होगा, क्योंकि हम सब में अहंकार है, हम इतने होशियार हैं इतने हैं, ये अनुकूल होगा जब ज्ञान हो, ज्ञान होगा तो आप समझ पाओगे ये भगवान की इच्छा है कि हम सबके भक्त बने। यहां तो कहा गया है उत्तम भक्तों की सेवा करो, उत्तम भक्तों की तुझ सेवा करो, तो आप में विनम्रता का भाव होगा। आप चैतन्य चतुर्मिता में ईश्वरपुरी की कथा पढ़ते हो, ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था, तो मानव पूरी बुरी आयु में कमजोर थे, ईश्वरपुरी उनके मन को साफ करता था, पेशाब को उन्होंने कंधे में उठाता था। लेकिन इसकी तुलना में एक और भक्त शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी भक्तों की निंदा करके बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु के कमरे में आए जबकि चीटियां चल रही थी, गर्मी का दिन था। रामचंद्रपुरी कहने लगे, लगता है हमारे सन्यास जी को मीठी चीजें अच्छी लगती हैं। उसने सोचा कि ये चीटियां आ गई हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मीठा खाया है और जमीन में गिरा दिया था। तो अंत में गुरु को भी गलत उपदेश देने लगा क्योंकि इसमें आदत पड़ गई थी। पहले आदत पड़ी सन्यासियों की निंदा करना, फिर ये निंदा करने की आदत कैंसर के समान है। कैंसर आप जानते हो एक स्थान से शुरू होता है, ऐसे ऐसे फैलते जाता है। तो पहले हम निंदा करने की, एक व्यक्ति की निंदा करते हैं। रामचंद्रपुरी पहले तो सन्यासियों की निंदा कर रहा था, फिर महाप्रभु की निंदा करने लगा, फिर अपने गुरु की निंदा करने लगा, गुरु को उपदेश देने लगा। और अंत में महानंदपुरी ने क्या कहा, निकल जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें देखती रह कर मुझे शरीर त्याग त्यागूंगा तो जीवन असफल माना जाएगा। तो हमारे इन चापलूसी ईर्ष्या की कमजोरी है, इसे बचना है। और सेवा भाव, अगर आप आपको उत्तम कोटि के भक्तों की सेवा का मौका मिले तो उसका लाभ उठाओ। अगर आपको भक्तों की सेवा का मौका मिले, चाहे नया भक्त हो, उसकी भी अगर सेवा करे करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान में ये भाव रहना चाहे, हम सब भक्तों के दास हैं। और ये इस भावना से चलोगे तो वहां किससे बचोगे, अपराधों से बचोगे। क्योंकि शास्त्र में अनेक स्थानों में कहा गया है कि हमें विनम्र भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो फिर भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। अहंकार के भाव से करोगे सब ताड़ी मारेंगे, पर भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान कहेंगे इस भक्त में बड़ा अहंकार है। इसीलिए शास्त्र में अनेक स्थानों में यह वर्णन किया गया है, प्राइडनेस, अहंकार से रहे। तो अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आपके शरीर का वजन होगा 50 किलो, अहंकार का वजन है 100 किलो। आपका अहंकार का वजन शरीर के वजन से दुगना क्या तिगना है। तो ये अहंकार को पीसना है हमने, जैसे पीसते हो ना। कैसे पीसोगे, सेवा के माध्यम से। भक्तों की सेवा कर, तुझ सेवा करो। हम अंदर में आते हैं तुझ सेवक के लिए, बनने के लिए। यानी हम सांप की सेवा चाहिए जहां हमारा हुक्म चलेगा। हुक्म चलाने नहीं आते, हम भक्तों की सेवा करने आते। ये भाव शास्त्र में अनेक स्थानों में है। और इंद्रिया तृप्ति से कैसे बच सकते हो, क्या कहते हैं नारद मुनि, वो कहते हैं इंद्रिया तृप्ति से बच सकते हो ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करके। ईर्ष्या जो है वो भी हमारी शत्रु है। हम देखते हैं किसी में कुछ योग्यता है तो ईर्ष्या का भाव प्रकट हो जाता है। चैतन्य चैतन्य में आप अम्बोगा की कथा पढ़ते हो, जो कि सर्व भट्टाचार्य के नमाज है। अम्बोगा हमेशा मौका देख रहा था महाप्रभु में नुक्स निकालने के लिए। एक समय महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, भगवटाचार्य की पत्नी ने महाप्रभु की प्रशंसा के लिए बहुत बड़ा भंडारा बनाया, तो महाप्रभु तो ऊंचे कोटि के सन्यासी थे, थोड़ा ही ले रहे थे। मोगन ने देखा इतना बड़ा भंडारा, कहने लगे देखो ढोंगी सन्यासी को, सन्यास लिया है और खाते हैं रियासत से भी ज्यादा। ऐसा तो इस मोगन को बाद में वही गहरी बीमारी हो गई कॉलरा की, जिसे वो शरीर त्यागने वाले थे। तो महाप्रभु वहां गए उनके घर कि महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं सर्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु ने अपना हाथ रखा अमोवा की छाती पर और कहा जब तक ईर्ष्या और द्वेष रहेगा तुम्हारे हृदय में भगवान वहां नहीं रहेंगे, तो ईर्ष्या द्वेष से बचो। तो ईर्ष्या द्वेष हमारे क्या है, शत्रु है। हम सोचते हैं इसको ये सुविधा मिल गई, हमें ये सुविधा नहीं मिली, इसको ये इसमें ये योग्यता है मेरे में योग्यता नहीं है। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्या से बचो और इंद्र तृप्ति को रोकोगे तो ईर्ष्या से भी बचोगे। तो नारद मुनि इस प्रकार से इस अध्याय में लगभग हर अनर्था से बचने का उपाय दे रहे हैं। जैसे मैंने रविवार की क्लास में कहा था, नारद मुनि कहते हैं इंद्र तृप्ति से बचोगे अगर दिल धोकर ये निर्णय करोगे हमने इंद्र तृप्ति में नहीं जुड़ना। सो हमारा सौभाग्य यह है कि पापा जी ने हमें ग्रंथों में पूरा ज्ञान दिया है। असल में इन ग्रंथ ज्ञान परम भगवान दे रहे हैं, नारद मुनि भी शक्त वैशा अवतार हैं, पर प्रभुपाद हमारे आचार्यों ने व्याख्या की है जिसके द्वारा हम और गहराई से इन ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, शोक से कैसे बचोगे, ज्ञान से, और मोह से कैसे बचोगे, हाँ, और ईर्ष्या द्वेष अहंकार से रहित कैसे होंगे, किसकी सेवा, भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा करोगे भगवान की भी सेवा करोगे गुरु की भी सेवा करोगे। अगर ये सिर्फ गुरु की सेवा करोगे भक्तों की नहीं तो भी आप अहंकार से रह नहीं हो पाओगे। तो हमारा भावना जो है सब भक्तों की सेवा। कई भक्त हैं इसको में भी जो तरसते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, तो ये भाव होना चाहिए कि हमें जब मौका मिले सेवा का तो अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। नारद मुनि इन श्लोकों में मैं सब भक्तों को कहता हूं कि इस अध्याय के जो ये जो 8-9 श्लोक हैं हमें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी हर समस्या का हल हो सकता है इन श्लोकों के द्वारा। तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, और पढ़ेंगे और सुनेंगे और ध्यान से जाप करेंगे तो बिना शंका के आध्यात्मिक उन्नति कर सकोगे। अंत में क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम, जो कि जीवन का लक्ष्य है। तैयार हो सब, सबके सेवक बनोगे पक्का, आपको बोला जाए वो कचरा उठाओ तो उठाओगे। अच्छा प्रभु सबको तुझ सेवा दो। ओके हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? यस, नो क्वेश्चन।
हरे कृष्ण। हमारे दो प्रश्न है, एक तो कि आप कह रहे थे कि जो निंदा करने की प्रवृत्ति है ये कैंसर के समान है, एक भक्त से शुरू होती है फिर आगे बढ़ जाती है। तो मैं सोच रहा था कि दो तीन सालों से निंदा करें थोड़ा थोड़ा इधर उधर। मैं सोच रहा था कि हम तो थोड़ा थोड़ा निंदा कर रहे हैं इतने सालों से, इधर उधर करते रहते हैं पर सब ठीक चल रहा है। तो
अंडरस्टैंड,
यू आर टेलिंग द लेक्चर दैट द टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज,
आई वाज सेइंग द टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज जस्ट गोज ऑन स्प्रेडिंग।
या सो बट आई वाज थिंकिंग दैट वी आर क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, लिटिल लिटिल हेयर एंड देयर, सम ड्यूटी हेयर, सम ड्यूटी देयर, एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो वी डोंट टेक इट सीरियसली दैट आई हैव टू अवॉइड इट बिकॉज आई सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग नाइसली।
बट यू कैन हैव कैंसर फॉर इयर्स एंड इयर्स बिफोर इट फाइनली स्ट्राइक्स। कैंसर ऐसी बीमारी है, कई सालों तक आपके शरीर में रह सकती है और अंत में उसका परिणाम आता है। तो ये जो उनका प्रश्न ये था कि हम चापलूसी, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, मुख निकालना, ये आदत बढ़ते जाती है पर हम बिल्कुल नहीं डूबे माया में, हम सोचते हैं ठीक है। तो ये बीमारी आस्ते आस्ते बढ़ती है। यस,
सेकेंड क्वेश्चन वॉज इन द श्लोक ऑल्सो इट कम्स दम्भम महद उपासया, और आप भी बता रहे थे कि भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो आप कह रहे थे कि केवल गुरु की सेवा करना सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है।
इन द श्लोक इट इज रिटन एडवांस डिवोटीज, उत्तम भक्तों की सेवा करना।
हाँ जी महाराज, तो
पर मैंने कहा कि उत्तम भक्तों की सेवा करो पर दूसरे भक्तों की भी सेवा करो।
महाराज, जब उत्तम भक्तों की सेवा से हो सकता है तो फिर दूसरे भक्तों की सेवा करने की क्या जरूरत है, ऐसे विचार आता है मुझे।
क्योंकि हमारा सिद्धांत ये है कि हम सबके दास हैं, ये ज्यादा उत्तम भक्त भाव है। उत्तम भक्तों की सेवा करने से लाभ है पर ज्यादा उत्तम उससे है सब भक्तों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं, हम केवल उत्तम भक्तों की सेवा करेंगे और किसकी सेवा नहीं करेंगे। कई बार हमारे में भाव होता है कोई सन्यासी क्लास से रहता तो हम क्लास में जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। हमारे में भाव होना चाहिए कि हम भगवान का संदेश सुनने जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो जो भगवान का संदेश दे रहा है, जो असली संदेश दे रहा है। तो हमारे मन में भाव, उत्तम भक्तों की सेवा करो, तो ये नहीं कहना नहीं करो, भगवत में भी कहा गया है, तो साथ में दूसरे भक्तों की भी सेवा करो। ओके, यस, क्विक, 5 मिनट्स मोर।
हरे कृष्ण महाराज, यू आर एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल ऑफ हिरण्यकशिपु, हाउ ही वॉज स्पेसिफाइंग द फैमिली ऑफ हिरण्याक्ष विथ स्पिरिचुअल नॉलेज। सो बट देन इन हिज केस ही कुड नॉट रियलाइज दैट नॉलेज इवन दो वी मे नो मेनी टाइम्स।
हिरण्यकशिपु had fully realized the knowledge. But Hiranyakashipu, in his heart of hearts, was a great devotee of the Lord. He and his brother were Jaya and Vijaya. But when Jaya and Vijaya stopped the doorkeepers, stopped the Kumaras from entering the Vaikuntha planet, Kumaras cursed them. When they were cursed, the Kumaras realized they made a mistake, because the Lord, when he came out of his room, and he saw, and they saw how intimately the Lord was talking to his servants. They wanted to withdraw the curse. They told the Lord, "By the Lord, we made a mistake. We want to withdraw the curse." And the Lord said, "No, it's my desire that you curse them." Why? Because the Lord was planning on appearing. He wanted his own devotees to play the role of demons. So Hiranyakashipu externally appears as a demon, but in his heart of hearts he was a great devotee. Never forgot Krishna. He was always thinking, "Krishna is my enemy." Okay.
Hare Krishna. Another example also, we see Romaharshan Sutta. He also has had spiritual knowledge, but he was also proud. So, how we can overcome this, our pride, in spite of having some elementary...
By regularly hearing the importance of giving up pride. Then the question is, that we how to overcome this ankar ke bhav ko tyage. Suno aur palan karo. We not only listen, we also practice. Like we say in English, practice what you preach. So we have to practice the philosophy. It's not that this philosophy is only theoretical. We have to practice it. We practice pridelessness by trying to serve Vaishnavas. I'm sorry.
Hare Krishna Maharaj Ji, how services are classified, Shrestha or Kanishta?
I'm sorry.
Services? How we say that this is Shrestha and this is Kanishta? Services.
Only small, little, big. Small service can be washing the pots in the kitchen, bartan manjna, jharu dena, mandir saaf karna. Videshon mein hamare bhakton ko sab kaam karna padta hai. Bartan manjna. Hamare Montreal, Canada mandir mein ek prabhupada ke shishya hain. Wo roz mandir aate hain. मंदिर के सारे बर्तनों को साफ करने के लिए 35-40 साल से तो पर भारत में हम जब बिगड़ जाते हैं तो हमारे में भी भाव होना चाहिए झाड़ू देना सब्जी काटना बर्तन मांजना है कि नहीं हम इसका में थोड़े बने थे ये सब्जी काटने के लिए हम तो इंजीनियर हैं आखिर जो भी सेवा है भगवान के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मंदिर साफ कर रहे थे कि नहीं और महाराज पद पूरा झाड़ू दे रहे थे भंगी बन गए थे भगवान के ओके ओके माय वॉइस इज गोइंग टू क्रैक आई विल स्टॉप नाउ आई टू लीव
महाराज आपने कहा कि हमें मीनियल सर्विस करनी चाहिए लेकिन हम देखते हैं महाराज मैं कि अगर हम मीनियल सर्विस में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कभी कभी हमें उसमें भी घमंड हो जाता है कोई भी सेवा हम अगर बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो दूसरे व्यक्तों को वैल्यू नहीं देते हैं और उसमें भी घमंड हमारा बढ़ जाता है
किस रूप से
जैसे महाराज हम कुकिंग करने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो हम फिर अपना हुक्म चलाते रहते हैं या हमारी सुने ऐसा हमारी बात मानी जाए या फिर हम किसी भक्त की सेवा करने में एक्सपर्ट हो गए हैं कुछ तो फिर हम दूसरे व्यक्तों को वैल्यू देते हैं کسی بھی سیوا میں جو نمرتا کی سیوا ہے تو اس میں ہم اپنا لائک اپنا رتبہ دکھانے کا پریاس کرتے ہیں.
یوگی تو بڑے ہیں تو پریاس کرو اہنکار نہیں بڑھے, ایکسپرٹ بن جاؤ بڑا اہنکار نہیں, میرے علاوہ کوئی یہ سیوا نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے آپ کو اتیانت بھاگیشالی ماننا چاہیے کہ ہمیں سیوا کا موقع ملے. آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے پر سیوا کا موقع سیوک نہیں. اوکے آئی ول اسٹاپ ناؤ. لاسٹ کوشچن.
ہرے کرشن. گرو مہاراج جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ایرشیا سے بچ سکتے ہیں, اندر تتو سے بچ سکتے ہیں اگر ایرشیا ہم میں نہیں رہے گا, تو اس کو تھوڑا سا اور آپ ایکسپلین کریں گے کہ کیسے
کس
اندر تتو سے کیسے بچ سکتے ہیں.
نرندر منی کہتے ہیں میکنگ پلانز ود ڈیٹرمنیشن یو کین اوورکم سینس گریفیکیشن. سو واٹ از دیز اٹ مین میکنگ پلانز ود ڈیٹرمنیشن. Do you determine that I will avoid sense gratification? جیسے آپ پڑھائی کرتے ہو ڈٹرمن ہو جاتے ہو مجھے اچھے نمبر چاہیے تو یہ اچھا داخلہ ملے گا, آپ پڑھتے ہو. تو روپا گوسوامی جی کہتے ہیں درد ہونا چاہیے ڈٹرمنیشن. اوکے یہ کوشچن. لاسٹ کوشچن. مان لو آپ نے کوئی کمزوری دیکھی کسی میں تو اس کی نندا مت کرو, وہ کمزوری سدھارنے کے لیے مندر کے ادھیکاری سے چرچا کر سکتے ہو, پر وہ نندا نہیں ہوتی. مان لو ہم نے کوئی کمی دیکھی ہے, ہم وہ کمی کو سنا رہے ہیں. اگر آپ ونمر بھاو سے سنا رہے ہو تو وہ چاپلوسی اور نندا میں نہیں گنا جائے گا. اوکے ہائے کرشنا.